सुप्रभात, नमस्कार श्रोता बंधुओं, देव कुमार चंद्रपुरा बोकारो से। मैं आप लोगों के बीच आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कहानी का शीर्षक है कौवे और उल्लू। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद के पेड़ पर कौवों का राजधानी था। हजारों कौवे उस पेड़ पर वास करते थे। पेड़ पर राजा मेघवन भी रहता था। के पेड़ के पास ही एक पहाड़ था जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अमरदन था। अमरदन बहुत प्रतापी राजा था। वो तो उसने उल्लुओं को दुश्मन नंबर एक घोषित कर रखा था। कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो कौवों के राजा मेघवन को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों के एक सभा में इस समय पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवन बोला, मेरे प्यारे यार कौवों, आपको तो पता है कि उल्लुओं ने आक्रमण करने के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारी सुशाली पुरहंकार जीत थी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाब भी हमारा नहीं कर पाते हैं। यज्ञ के गुफाओं में अंधेरे में वो दिन के समय बैठ जाते हैं। पर मेघवन ने कहा, बुद्धिमान कौवे से अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। एक डरपोक कौवा बोला, हम उल्लू को समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हमें मान लेना चाहिए। अपने ताकतवर दुश्मन से पटते रहना यही तो भला है। बहुत से कौवों ने काम काम करके विरोध प्रकट किया। एक माँ का कौवा सीखा, हम उन दुश्मनों को से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशवाद कौवा बोला, सुबलवान है, हम यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हम करो से लेकर सहायता लेना चाहिए। कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमान थरसी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा था, सबकी दलील सुन रहा था। राजा मेघवन उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। थरसी बोला, महाराज सु अधिक सुशाली है तो छल नीति से काम लेना चाहिए। तब महाराज बोले, कैसे छल नीति, साफ साफ बताइए। थरसी राजा ने कहा, थरसी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवन टोका, ये आप क्या कह रहे हैं थरजीवी। थरजीवी वन वाली डाली पर जाकर कान में कुछ बोला, छलनीति के लिए हम ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ पर उल्लू जासूस हमारा इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। इस देखकर हम फूट और झगड़े। इसके बाद आप सारे कौवे को लेकर रिम्यूक पर्वत पर जाकर मेरा जय डालें। मैं उल्लुओं को दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। भेद बनकर उनका लंका ढाऊंगा। फिर क्या हुआ, नाटक शुरू हो गया। थरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर लीजिए महाराज, कर लीजिए महाराज, हम बच जाएंगे। यह हमें मरवाने की, तब राजा बोले कि हमें मरवाने की तुला है। मेघवन चीखा उठा और राजा ऐसी बदतमीजी से बोलने का तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसके राजा कौवे राजा बोला, कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस जो है इस जो कौवा जिसका मंत्री था को मार डालो, मार दो। कौवे के मित्र ने बोला, राजा मेघवन ने अपने पंख से थरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की कि मैं थरजीवी को कौवों के समाज से निकाल रहा हूँ। अब से यह मेरा मंत्री नहीं है। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। के पेड़ पर छिपे बैठे उल्लू जासूस की आंखें चमक उठी। उल्लू के राजा के जासूस ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट हो रही है और गाली गलौज हो रहा है। इतने सुनते ही उल्लू के सेनापति ने राजा के कहा, महाराज यह मौका है कि कौवों पर आक्रमण कर देनी चाहिए का सही तरीका। इस समय हम उसे आसानी से पराजित कर देंगे। उल्लू के राजा अमरदन को का बात अच्छा लगा। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजार उल्लुओं का सेना बगैर के पेड़ पर आक्रमण करने चल दिया, परंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता योजना के अनुसार मेघवन सारे कौवों को लेकर मेघवन जो है सारे कौओं को लेकर पर्वत पर जो चल गया था। पेड़ खाली कौओं के राजा ने चुका, कौवे हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। इससे कायर कर हजार थू सारे उल्लू हु 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 के आवाज निकाल कर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ी में गिरा बड़ा थर्जी जो उसका मंत्री कौओं का मंत्री था, यह सब देख रहा था। थर्जीवी ने कांप कांप की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वह कौआ है, उसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था, पूरा अपमानित कर रहा था। उल्लू के राजा भी आया, उसने पूछा तुम्हारा यह दुर्दशा कैसे हुई। थर्जी बोला, राजा मेघवन की मंत्री हूँ था, मैंने उनको यह सलाह दी कि उल्लू के नेतृत्व में इस समाज के प्रारंभी राजा है कर रहे हैं, प्रतापी महाप्रतापी राजा कर रहे हैं, हम उल्लू को अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवन क्रोधित हो गया और मुझसे फटकार की कौओं का की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लू का राजा अमरधन सोच में पड़ गया। उसने यानी नीति सलाहकार कान में कहा, राजन राजन ये तो कौआ उसका मंत्री है, नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग को नहीं रखना चाहिए, उसका नीति मंत्री से हम लोग को नहीं रखना चाहिए, यह हमारा ठीक नहीं होगा सुशासन के लिए, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ होगा, यह कौवा कोई भेद नहीं बताएगा। राजा को थर्जीवी को अपने साथ मिलाने का लाभ नजर आया। उल्लू आवो उल्लू थर्जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। अमरदन ने उल्लू सेवक से कहा, थर्जीवी इसको गुफा के मेहमान की तरह रखो, यह कोई नहीं होना जैसे कुछ नहीं होना चाहिए। थर्जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज अपने मुझे शरण दे दी है, यह बहुत ही अच्छी लगी हमें, मुझे अपनी सात गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह हमें रहने दीजिए, कर आपके गुण गाते रहने की मेरी इच्छा है। इस थर्जीवी गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से कहा, महाराज उसे जो उसे वास मत करो, उसे विश्वास मत करो, उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने का समान है। मर्दन ने उस क्रोध से देखा, तुम मुझे याद ज्यादा नहीं सिखा, समझाने की कोशिश कर मत करो, जहाँ जो चाहो तुम यहाँ से जा सकते हो, और उन्हें अपने दो तीन मित्र के साथ वहाँ से सदा के लिए, यह कहता हुआ विनाश कर ले विकृत बुद्धि। कुछ ही दिन बाद थर्जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के पास रखने लगा। सरकार सर्दियां आने वाली है, लकड़ियां के झोपड़े बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बच सके। धीरे लकड़ियां का काफ जो कि काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो थर्जीवी वहां से उड़कर श्रीमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवन और कौओ शरद की साथी रहता कर रहे थे। थर्जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहाँ आग लगी है एक एक जलती लकड़ी कर मेरे पीछे आइए। कौओ की सेना चोट में जलती लकड़ियां पकड़ थर्जीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचा। थर्जीवी ढेर ढेर लगाई हुई लकड़ियां आग में लगा दी गई। सभी उल्लू जलने के दम घुटने लगे गए। राजा मेघवन ने थर्जीवी कौओ का उपाधि ली और उससे बहुत धन्यवाद किया। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? अपने घर में पना देने से शत्रु को अपने घर में पना देने से विनाश का समान होता है।